तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से यहूद के मजहबी रहनुमा जो थे दलाइल के मैदान में शिकस्त खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आ गए कि जिसकी वजह से इस्लाम को दूसरों की नज़रों में मशकूक कर दें। इसी तरह की कोशिशों में उनकी जो कोशिश थी वो क्या थी कि लोग इस्लाम से इस तरह से दूर हो जाएं कि जो लोग खुद भी मुसलमान हैं उनको इसका शक होने लगे कि क्या वाकई हम लोग उस दीन को जिसको दीन समझ के अपनाए हुए हैं वो दुरुस्त दीन है। इनकी ऐसी ख्वाहिशात और ऐसी कोशिशों और हक में मिलावट का तذکرہ करने के बाद अब आयत नंबर 72 में इनकी एक साजिश का तذکرہ है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि वक़ालत ताइफ़तु मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िल अलल्लज़ीना आमनू अलल्लज़ीना आमनू वजह नहारी वकफुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिउन। और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ ताकि ये लोग भी पलट जाएं। इसका मफहूम समझना चाहें तो एक लफ्ज़ में इस आयत का टॉपिक आप लिख सकते हैं कि और साजिश पकड़ी गई या फिर और साजिश बेनकाब हो गई। ये इनकी गहरी साजिश थी। इन्होंने सोचा कि बाकी तो तरीके काम में आ नहीं रहे, इस्लाम अपनी हक्कानियत और अपने दलाइल की वजह से दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जो एक दफ़ा इसकी तरफ आ जाते हैं वो पलटते नहीं। और हकीकत में उस दौर में ये बात मारूफ हो गई थी कि एक बार जो इस्लाम की तरफ आ जाता है फिर पलटता नहीं है। इस रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए इस्लाम के दुश्मनों ने एक साजिश चली कि ये कैसे हो सकता है कि लोग इस तरह सोचें, चलो हम कुछ तरीका करते हैं। नतीजा क्या हुआ कि कुछ लोग जो बड़े मारूफ थे शहर के और लोगों के अंदर असर व रसूख रखते थे उन्होंने मुसलमानों की महफिलों में आना शुरू कर दिया। अब सच्चे और मुखलिस मुसलमान तो किसी को भी इस्लाम की तरफ आता देखकर खुश होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जब कोई किसी जगह का बड़ा या मारूफ शख्स आके बैठता है तो नज़रों में ज़्यादा आता है। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आज के दौर में तो मीडिया भी उसको कवरेज देने लगता है। जब उनका आना और बैठना जब मारूफ हो जाता तो फिर उसके बाद वो ये कहकर पीछे निकलना शुरू होते कि आए तो थे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस ये था वो था। और उनकी इस कोशिश का मकसद क्या था कि लअल्लहुम यरजिउन, कि ये मुसलमान भी अपने दीन से पलट जाएं, खमारा निकलना देखकर दूसरे भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ये निकलें। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया कि देखो अहले किताब का एक गिरोह, और यहाँ फिर वही बात है कि इसमें बड़े बड़े लोगों ही का गिरोह होता है, आम लोग आएं और चले जाएं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बड़ा आए और चला जाए तो वो बिल्कुल एक निकलती हुई ईंट की तरह बाकी दीवार को भी कमज़ोर कर देता है। कभी भी आप किसी जगह से एक ईंट उखाड़ना चाहें तो उसके इर्द गिर्द की दूसरी ईंटें भी ढीली होने लगती हैं। किसी महफिल में बैठे हुए लोगों में से एक उठ के जाने लगता है ना तो बाकी भी सोचने लगते हैं कि शायद मुझे भी तो जाना नहीं था। एक घड़ी देखता है ना तो सब सोचने लगते हैं कि लगता है कि वक्त बहुत हो गया है। बिल्कुल इसी तरह उस दौर में ये कोशिश करते थे कि शायद हमारी इस कोशिश से हम कुछ ना कुछ लोगों को इस्लाम से दूर करने का ज़रिया बन सकें। आप इसको ज़रा अपने ऊपर लेकर देखिए, अल्लाह की रहमत से ये क्लास अल्लाह ताला ने हम सबको एक तोहफे के तौर पे दी है। हम सब बैठे हैं, हमारी दिन रात ये कोशिश है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो बेहतरीन तरीके से अल्लाह की किताब को सीखें। आप सब अपने ही लिए आए हैं, लेकिन बिलफर्ज आप सोचें कि यहाँ को कोई वजीर, कोई सदर, कोई प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स अब ये तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो उनका आना तो मुश्किल है, ज़ुबान का भी मसला है, लेकिन कोई भी मिसाल ले लीजिए, आपके शहर की कोई मारूफ हस्ती जो उर्दू समझते हैं या वट एवर वो यहाँ आए तो क्या होगा, एकदम बात फैलेगी। आपको पता है फलां भी आता है। अब ये बात आप फ़ौरन हो सकता है अपने मियाँ को उसी वक्त ब्रेक में फ़ोन पे बता दें, आपको पता है आज फलां की बेगम आई हुई है, अच्छा तो फिर इसका अंदर ये अच्छी जगह होगी, चलो ठीक है। वो फ़ौरन दूसरों को बताएंगे, तुम्हें पता है मेरी बेगम कहाँ गई है, वहाँ वो वज़ीर साहब की बीवी भी आती है। अब बात फैल जाएगी, खूब फैलेगी बात। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन वो आते रहे, आप खुश हो रहे थे कि चले। देखिए खुश होने वाले दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं कि जो उनकी बड़ाई को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि चलो बड़े लोग आना शुरू हो गए हैं, मसलन काम करने वालों की नज़रें उन पे लग जाएंगी, अच्छा चलो अच्छा है, कभी डोनेशन चाहिए होगी तो ये बहुत स्पॉन्सर करेंगे, या कोई ये सोच सकता है कोई काम निकलवाना हुआ तो चले अब इन बेगम साहिबा से तो मैं ही दोस्ती करूँगी, अपने साथ ही जगह दिया करूँगी कि आप मेरे ही पास बैठा करें। लेकिन एक दूसरे खुश होने वाले होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम इनसे क्या लेंगे, उनकी नज़रें लोगों पर नहीं होती, वो ये सोचते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है अब ये आए हैं ना, अब ये अपने साथ इस तरह के और बासर लोगों को भी लाएंगे और इस्लाम जल्दी फैलेगा। पहली सोच इंतहाई कभी है, इंतहाई नापसंदीदा है कि आप सिर्फ अपने जलसों और अपने दरसों और अपने प्रोग्रामों में बड़े लोगों को ये सोच के दावत दे दें कि ये आएंगे तो ज़रा खूब चंदा भी मिल जाएगा और शोहरत भी हो जाएगी। याद रखिए, जब तक इस शहर से मुसलमान नहीं निकलेंगे तब तक इस्लाम नहीं फैलेगा। अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे दावत नहीं दी थी कि आओ तुम फलां बड़े हो, आके ज़रा हमारी महफिल को रौनक बख्श दो, नहीं। हाँ, इस सोच के साथ कि ये आए ताकि इस्लाम फैले, हम तो छोटे छोटे लोग हैं, हमारे तो कोई हाथ भी इतने लंबे नहीं, हम तो जो काम करेंगे वो शायद खुद ही चीखते रहें बोलते रहें, लोग माने ना माने, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स आ जाता है जिसका असर रसूख है, जो मीडिया तक पहुँच सकता है, जो इस चीज़ को बड़े लेवल पे ले जा सकता है, तो उसकी वजह से बहुत से आएंगे। तो ये दूसरी सूरत ये पसंदीदा है, इस बात पे खुश होना चाहिए। लेकिन बाकी रह गई बात, कोई आए या कोई जाए, याद रखिए इस्लाम को इससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब वही मिनिस्टर की बेगम जो काफ़ी दिन से आ रही थी, अब क्या हुआ कि एकदम आना छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या हुआ जी? कुछ ख़ास नहीं, मज़ा आया। अच्छा, फिर पता क्या होगा, जो लोगों को पहले से पता चलता है ना, मतलब हम ही में से यहाँ चंद लोग, तो वो फिर दो तरह की राय देंगे, कहेंगे वो तो आए थे, इन्होंने उनकी कदर ही नहीं की, उनकी पसंद का ख्याल ही नहीं रखा, कुर्सी उनको ऐसी ही दे दी टेढ़ी मेढ़ी, और इतनी सख्त बातें करने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ी सी उन्होंने एक दिन सवाल पूछा था, ये हो सकता है, तो क्या ज़रूरत थी कहने की कि भाई नहीं, इस्लाम हर दौर के लिए, आज और कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मशरक़ मगरब का कोई नहीं, क्या ज़रूरत थी, थोड़ा सा मसला नरम कर देते ताकि वो आती रहती। यानी आने वालों में से ही कुछ लोग फिर मुंतजमीन पे तनकीद करने लगते हैं कि ये इनकी वजह से गए हैं, और कुछ दूसरे जो लोग होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि ये चले गए हैं ना, इनकी समझ हमसे ज़्यादा है, ये पढ़े लिखे हैं, ये इंटेलेक्चुअल हैं, इनका असर रसूख है, इसका मतलब कि अब इस क्लास में कोई खूबी नहीं है। तो जब वो आके चली गई हैं तो फिर दूसरों के भी घर वाले कहेंगे अब आप भी आ जाइए, लेकिन फलां नहीं रही तो आप भी नहीं रहे। लेकिन याद रखिए कि जो दूसरों के आने से आते हैं वो फिर दूसरों के जाने से चले भी जाते हैं। असल बंदा जो दीन की खिदमत के लिए मतलूब है ना, वो लोगों के चेहरे देख के आने और जाने वाला नहीं मतलूब। कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जो लोग ये सवाल करते हैं ना, खोखले हैं ये लोग, ये लोगों पे नज़रें लगाए हुए हैं। यानी आप देखिए, वो चीज़ जो कभी किसी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, लोग वो सवाल आपसे पूछ लेते हैं। मुझे कुछ यहाँ के इतने सिस्टम्स का नहीं पता, मैं किसी महफिल में थी, जनरल महफिल थी, तो वहाँ कोई मुझे मिली तो बात हुई क्लास की, तो कहने लगी कि अच्छा माशाल्लाह क्लास चल रही, वट एवर जो भी उन्होंने कहा होगा उसको छोड़े, कहने की अच्छा आपने रजिस्टर करा लिया, मुझे क्या पता रजिस्टर कह कह रही है, मैंने कहा हाँ जो भी रजिस्टर होता है, मतलब मैं इन बातों के जवाब नहीं देने चाहिए, मेरा मतलब ये था कि यही कहती अच्छा कितने मेंबर हैं आपके, तो मैं परेशान थी, मैं आप सबको मेंबर समझती हूँ, देखे कि लोग खुद ही मेरा इल्म बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। तो बाद में मुझे पता चला, जो और भी कोई सुन रही थी, उन्होंने कहा आपको पता है वो ये पूछ रही हैं कि आप अब इस शहर में आ गई हैं, क्या रजिस्ट्रेशन हो गई है, क्या अब आपके साथ कोई मेंबर्स लग गए, मैंने कहा वो क्या होते हैं, कहने लगे कि वो मेंबर्स से फिर गवर्नमेंट पैसे देती है और फिर ये और वो। यानी आप देखें कि किसी को सीधा साधा रहने ही नहीं देते लोग, और ये महफिल कहाँ हो रही है जहाँ इर्द गिर्द 50-60 औरतें तो ज़रूर होंगी, और बिल्कुल गैर रस्मी मुलाकात, मैंने उनका ज़रूर नाम पूछा, और भी लोगों से पूछती हूँ मुझे याद नहीं रहते, तो मैंने उनके सवाल के बाद पूछा आपका नाम क्या है, और सच्ची बात है अब भी नहीं याद, मैंने कहा कि मैं इनके सवाल से सोचूंगी। तो बात क्या होती है कि लोग कितने आते हैं भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर आज की क्लास में आप मेरे सामने जितने लोग हैं, अगर कल इससे डबल हों तो क्या मुझे पढ़ाने में कुछ फ़र्क करना चाहिए, या आज अगर मिसाल है कि कोई छुट्टी का दिन है और आप में से आधी क्लास गायब है तो क्या मुझे आधा सबक छोड़ देना चाहिए। ऐसी बातें जब होती है ना, फिर ये बातें मारूफ होती हैं जी, फलां बड़ा मजमा हो तो खूब लंबा दर्स देते हैं, थोड़े लोग होते हैं तो 10 मिनट में टरखा देते हैं। ये चीज़ें जो है ना इस्लाम को नुकसान देती हैं। इन्होंने भी यही हरबा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस हरबे से भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ। जो मुखलिस सहाबी तो वो कहते हैं हु केयर्स, तुम आए हो तो आए थे, अपने लिए गए हो तो गए। देखिए, जिसकी नज़र हिदायत पे होगी, आप यहाँ कुरान पढ़ने आ रहे हैं ना, आप सबको लग रहा है ना कि ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इससे हमारे आखिरत के सवालों के जवाब की तैयारी हो रही है। क्या आपको अब इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आपकी दोस्त आज आई हैं कि नहीं आई? सुबह उठ के पूछें, अच्छा तुम नहीं जा रही, मेरा ख्याल है फिर मैं भी नहीं जाती। क्या आप ये बचकाना बातें करेंगे? ये तो वो रास्ता है कि जिसको कब्र में जाना याद है अकेले, वो कभी नहीं हटेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इस कोशिश से फ़ायदा तो क्या होना था, क़यामत तक के लिए रुसवाई के लिए आयत आ गई कि देखो ये कैसी बातें करते हैं, ये क्या काम करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। अच्छा अब यहाँ देखिए इस आयत का अगली आयत के साथ रब पहले पेश कर दूं, फिर इंशाल्लाह आयत को पढ़ेंगे जो मुश्किल तरीन आयत है इस सूरत की। अब जो लोग कुछ लोगों को तैयार करके इस तरह के कामों के लिए भेजते थे अल्लाह के नबी की महफिलों में कि जाओ देखो और किस तरीके से ये बातें करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन साथ ही उनको एक खौफ भी होता था। और वो क्या कि भेज तो रहे हैं इनको कि ज़रा उनको तोड़े और ज़रा उनको हिलाएं, लेकिन कहीं ये खुद ही ना हिल जाए। और ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने लोगों को भेजते हैं ना मुसलमानों के करीबी इलाक़ों में, मुसलमान मुल्कों में, तो बाद दफ़ा उनमें से बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते हैं। अब इनको खौफ क्या होता था कि देखो तुम जा तो रहे हो लेकिन अल्लाह के लिए अब उनसे मुतासिर ना हो जाना, क्योंकि उनको ये पता था कि अल्लाह के नबी के अखलाक बहुत अच्छा है और आपका किरदार, आपकी बातें अच्छी हैं। तो इसके लिए जो वो नसीहतें करते थे ना, वो अगली आयत में आ रही हैं। अगली आयत को आप बिल्कुल टुकड़ों में समझेंगे क्योंकि मुफस्सरीन ने इस आयत को मुश्किल तरीन आयत से ताबीर किया है। इस एक आयत में कई जुमले हैं और हर जुमले का दूसरे जुमले के साथ ताल्लुक़ क्या है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। मुझे तो अल्लाह की रहमत से बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन यह कि पहली दफ़ा पढ़ने या सुनने में मुश्किल होती है, तो हम इसको रुक रुक के पॉजेस के साथ करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें। आयत 73, वला तुमिनु, और ना तुम मानो, इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, मगर सिर्फ उसी की जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। ये कौन किसको कह रहा है? कुछ लोग जब दूसरों को ऐसी महफिलों में भेजते थे तो साथ ये नसीहत करके भेजते थे कि देखो तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम उनकी सिर्फ वो बात मानना जो तुम्हारे पुराने इल्म से मैच करती हो। कुछ लोग कुरान की महफिलों में आकर भी यही सोच रखते हैं, आ तो गए हैं, बाप दादा की रिवायात नहीं छोड़ेंगे, बस इनकी वो बातें ले लेंगे जो हमारे पुराने इल्म या पुराने अकायद या तरीक़ों से मैच करती हैं। तो यहाँ टैक्स के एतबार से देखें तो यहूद के उलमा जब अपने लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में भेजते थे तो साथ ही ये कह के भेजते थे कि देखो बस तुम उसकी मानना जो तुम्हारी बात माने, यानी तुम्हारा पैगाम और उनका पैगाम एक है तो ठीक है। और गोया कि यहाँ आप देखिए कि तासुब बरपा किया जा रहा है कि जो तुम्हारे दीन को मानेगा उसकी मानना, बाकी की ना मानना। आज ये जुमला मुसलमान एक मसलक से दूसरे मसलक के लिए बोलते हैं कि हम अपने मसलक की बात तो मानेंगे, दूसरे की नहीं मानेंगे। अच्छा अब ऐसे लोगों को क्या कहिए? कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दीजिए कि हिदायत तो बेशक अल्लाह ही की हिदायत है। यहाँ से पहले, कुल से पहले आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दीजिए कि हिदायत तो बस अल्लाह ही की हिदायत है, और इस लफ्ज़ अल्लाह से बाद एक ब्रैकेट बंद कर दें। ये जो हिस्सा है ना, ये जुमला मोतरेजा है। मोतरेजा जैसे एतराज़ होते हैं ना उर्दू में लफ्ज़, वही लफ्ज़ है। और इसका कलाम के पिछले हिस्से और अगले हिस्से से ताल्लुक़ नहीं होता। इसको समझना तो आप यूँ समझ लें कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वक्त, और बात करते करते मैं आप में से किसी से कहूँ कि ये लाइट ज़रा चला दें और मैं आगे बात शुरू कर दूं, क्या मेरे इस जुमले का कि लाइट जला दें उसका तफसीर से कोई ताल्लुक है? नहीं है ना। तो इस तरह के जुमले को जुमला मोतरिजा कहते हैं, और ये कलाम का हुसन होता है। अरब लोग ख़ास तौर पे इस चीज़ को लाते हैं, और आप देखें कि इससे होता क्या है कि क्लास इंटरेक्टिव हो जाती है। बातें करते करते बीच में कहा, अच्छा आप क्या कहती हैं, आपने क्या समझा, आपने क्या समझा, तो इंट्रैक्शन बढ़ता है ना आपस में, एक दूसरे के साथ ताल्लुक बढ़ जाता है। तो ये बात को ज़िंदा करने के लिए या लाइवली टच देने के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है, और कुरान पाक में ये अंदाज़ बहुत जगह मिलता है। अल्लाह ताला ने इनके इस कॉल पे कि ला तू मिनु इल्ला लिमन तबीया दीनकुम, इस पर कमेंट दिया है कि देखो कितने नासमझ हैं, इनको बिल्कुल समझ नहीं है कि दूसरों को कह रहे हैं कि तुम वो मानना जो तुम्हारी मर्जी का है। इनका ख्याल यह है कि इनकी इस नसीहत से फ़ायदा हो जाएगा। या इनकी इस बात से क्या ये किसी को हिदायत के रास्ते से रोक लेंगे? आप कह सकते हैं कि जान हाथ में रख कर या दूसरों की महफिलों में भेजते थे लोगों को, और आज भी भेजते हैं। आज भी लोग चाहते हैं कि ऐसी जगहों पे जाएं और खबरें लाएं, और बाहर रह के जो काम नहीं कर सकते वो अंदर कर लेते हैं, लेकिन साथ धड़का ये लगा होता है कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनका ये खौफ जो है ना, ये होकर ही रहेगा। कहावत है एक हमारी जुबान में कि जिस चीज़ का खौफ होता है ना वो हो जाती है, धड़का होता है ना। जैसे फिरौन को डर था कि वो बच्चा पैदा होके कहीं मेरी सल्तनत को ख़त्म ना कर दे, लेकिन वो काम हो गया। जिस चीज़ का आप अंदेशा रखेंगे ना वो काम होगा। बाज़ लोग खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, ये ना हो जाए, ये ना उभर जाए, ये ना फैल जाए, तो उनके अंदेशे फिर अल्लाह की तौफीक से पूरे भी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके रोकने से कुछ नहीं होगा, इन्नल हुदा हुदल्ला। एक मतलब तो ये बनता है कि इनको अगर अल्लाह ने हिदायत देनी है तो हिदायत अल्लाह सुबहाना तला दे देंगे, इनके रोकने से या कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, इस आयत का अगर पीछे से ताल्लुक रहे, हिदायत अल्लाह की है तो इससे क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि तासुब की जो ये पुकार लेके बैठे हैं कि हक वही है जो लिमन तबिया दीनकुम, यानी ये अपने दीन को ही बस हक कहने वाले ये सोच रहे हैं कि हमारा हक है, हमारा मसलक ठीक है, हमारी सोच ठीक है, हमारा फतवा या राय ठीक है, तो इनको बता दो कि ठीक का मेयार तुम नहीं हो, अल्लाह है। इन्नल हुदा हुदल्ला। देखिए पहला लफ्ज़ जो है ना अल के साथ है, अल हुदा, ये प्रॉपर नाउन है जैसे इसम मारिफ है, और आगे है हुदल्ला नकरा, यानी ये वाहिद मुकाम है कुरान पाक का कि हिदायत को खास करके और आम करके जमा कर दिया। ग्रामर की बातें छोड़ दें, बात जो इससे समझ आती है कि खास मामलात में हिदायत चाहिए या आम मामलात में चाहिए, दोनों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। किसी को इनफरादी तौर पे किसी मामले में कोई गाइड कर सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात है, किसी को इज्तमाई मामले में कोई गाइड कर सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात है, हिदायत का सोर्स अल्लाह है। क्यों भाई, इसकी कोई दलील है? बहुत बड़ी दलील है। क्या? अल्लाह सुबहाना तला का नाम अल हादी। अल हादी का लफ्ज़ी मानी देखे ना तो हिदायत देने वाला या हिदायत वाला, जिसकी चीज़ होती है उससे मांगेंगे कि दूसरे से मांगेंगे? आप उसी से मांगेंगे तो मिलेगी ना। मसलन ये कलम पेंसिल मेरे हाथ में, ये मेरी है, तो आप नफीसा से मांगे तो क्या नफीसा दे सकती हैं? आप कहेंगे नहीं, नफीसा आपसे सिफारिश करवा के दे सकती है। ठीक है, नफीसा मुझे कहती हैं कि आप ये कलम इनको दे दें, इख्तियार किसका है, फिर भी मेरा है ना। ये समझ लें, इतना प्यारा ये एक जुमला है कि इसकी बुनियाद पे आप अपने पूरे दीन को चेक कर सकते हैं। हिदायत, रहनुमाई, गाइडेंस, लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, इन सब का मेन सोर्स अल्लाह के हाथ में। डायरेक्ट उससे जाके मांगेंगे ना वो दे देगा। आप दिल को खाली करके इस क्लास में बैठे हैं ना, इंशाल्लाह हिदायत से भरपूर दिल लेके जाएंगे, हिदायत आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन अगर आप बीच में वास्तों में आ गए, वसीलों में आ गए, ये कौन होते हैं वसीलों से हिदायत लेने वाले जो आपको कहते हैं ये ज़रा सवाल पूछ के आना, ये जा रही हो ना वहाँ से ज़रा ये मसला पूछ के आना, कहते हैं लोग आपको? आते नहीं, बैठना नहीं चाहते, कुछ की मजबूरियाँ भी होंगी, मैं हर एक को नहीं कह रही। बाज़ दफ़ा ऐसे हालात होते हैं, कोई मसला आ जाता है, वो कहते हैं अच्छा तुम जा रही हो क्लास में पूछ आना, ये अलग बात है। कुछ लोग इल्म नहीं हासिल करना चाहते, सवालों के ज़रिए या तो कुछ इल्म लेना चाहते हैं या परखना भी चाहते हैं कि इनका ये मसला क्या है और कुछ तरह। तो ऐसे लोगों ने आपको वसीला बनाया, आइए पूछिए सवाल, अब मर्जी है हम आपको बताएं ना बताएं। भाई आपको इधर आना पड़ेगा, फिर ये सवाल समझ आता है। आप कहें इस बिल्डिंग की दीवारों में कोई ऐसी बात है, जब आप अंदर आते हैं ना फिर सवाल समझ आते हैं, बाहर जाएंगे तो समझ नहीं आते। और कितनी बातें जो आपको यहाँ समझ आती हैं वही बातें आपको खुद कहा जाता है कि खुदा के लिए भी बाहर ना कीजिएगा, क्योंकि जब तक इल्म के माहौल में आप नहीं बैठते ये दरो दीवार भी आपको सिखाते हैं। तो लिहाजा जो लोग इनडायरेक्ट नॉलेज हासिल करना चाहते हैं वो भटक जाते हैं। फिर दूसरा एक और भी नुकसान होता है ना, कहने वाले ने तो सीधी बात कह दी, आप ही ना ठीक बताएं, बस आपने सवाल पूछा आपको बता दिया गया, हो सकता है आप सही नोट ना कर सकें, बात में एग्जेजुरेशन हो जाए, आप बाहर करें तो वो कहेंगे अच्छा आपने यूं कह, बात बदल गई ना। तो डायरेक्ट जो चीज़ होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है कि हिदायत मांगनी है तो उससे मांगो। इसीलिए बंदे मोमिन को दिन में कम अज़ कम 17 बार सिखाया गया कि ये कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधी राह दिखा, अपने पास से हिदायत दे दे जिसके साथ हम इस ज़िंदगी को बसर कर सकें, और वो ही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो अल्लाह की तरफ सोर्स ले लेते हैं। और आयत के इस हिस्से से ये भी बात वाज़े हो रही है कि जिस चीज़ का प्रूफ अल्लाह और ऑफ़ कोर्स अल्लाह का रसूल जो है, वो इल्मी एतबार से फ़र्क नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे मेरी बोली हुई बात आप सुने, मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन रहे हैं, और अगर आप में से कोई इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिख ले तो इन दोनों में कोई फ़र्क होगा? चले ये एक साइड की मिसाल आपको थोड़ी सी बता दूँ। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना, कल आप रिकॉर्डिंग सुने, या एक एक लफ्ज़ मेरा बोला वो आप में से कोई लिखे और वो नोट्स कोई सामने रखे, क्या उन दोनों में फ़र्क होगा? मवाद एक ही होगा, तासीर फ़र्क हो सकती है, बोलने के अंदाज से और लिखने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन नॉलेज एक ही है, ठीक है? और ऑफ कोर्स सुनने से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। बोलना, हम तशबीह नहीं दे रहे, समझने के लिए बात करें। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम, जैसे बोल रहे हैं हम सब। और हदीस क्या है? ये या कुरान की जो तफसीर या नबी सल्लम ने जो बातें बताई वो रिटन बातें हैं। बस जो कलाम और बुक का फ़र्क है ना, किसी की कैसेट सुनने में या उसकी लिखी हुई किताब के पढ़ने में जो डिफरेंस हो सकता है ना, बस वो डिफरेंस आप लगा लें कुरान और हदीस के फ़र्क में, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं। तो पता क्या चला कि हर वो बात जिसका सोर्स कुरान या हदीस से मिल गया, उसके बाद फिर आप अपने आप को नीचे कर लेंगे, फिर उसके मुकाबले में किसी का कॉल, किसी का इज्तिहाद, किसी का फतवा नहीं चलेगा। चलिए अब ये इन्नल हुदा हुदल्लाह को बीच में से अब एक दफ़ा एग्जाम करके पीछे वाली आयत को अब आगे से मिलाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ यूता अहदुम मिसलमा उतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम। और वो ये भी कहते हैं, अगर आप ये जो ऐ यूता है ना, इससे पहले अपने पास तर्जुमे में ये जुमला लिख लें कि एक तो वो ये कहते थे कि सिवा उसी पे ईमान लाओ जो तुम्हारे दीन पर चलता है, और वो ये भी कहते हैं कि इस बात का यकीन कर लो, क्या, कि ये कभी नहीं हो सकता कि यूता हदुम मिसलमा ऊती तुम, कि जो तुम्हें दिया गया वो किसी और को भी दिया जाए। इसको आप अपने लफ्ज़ों में यूं समझें कि यहूद के उलमा का या उनका प्रोपेगंडा एक ये भी था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस बात का तो यकीन ही ना करो कि किसी दूसरे को भी वही चीज़ दी जा सकती है जो पहले से तुमको मिल गई है। पहले नबूवत तुम्हारे पास थी बनी इसराइल में, तो अब कोई बनी इस्माइल का शख्स कहता है ना कि हमें भी नबूवत मिल गई है, तो कतन इसका यकीन ना करो। कल तक शान और शौकत तुम्हारे हाथ में थी, मजहब की गद्दियों पर तुम सवार थे, अब इसका बिल्कुल यकीन ना करो कि अगर तुम्हारी तरह किसी और को भी ये मनसब मिलने लगे। इतनी बात क्लियर है? पहली बात क्या कहते थे इनके बड़े, कि तुम सिर्फ उसको मानना जो तुम्हारे दीन के साथ मैच करता हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस बात का कतन यकीन ना करना कि किसी दूसरे को भी कुछ ऐसी चीज़ दी जा सकती है या किसी दूसरे के पास भी वो खूबी हो सकती है जो तुम्हारे पास थी। ये जुमला क्या सिखा रहा है? खुद पसंदी। कुछ लोग जो कई साल तक लोगों में बड़े बने रहते हैं ना, वो दीन पर अपनी इजारादारी कायम करते हैं। वो समझते हैं जब हम हैं किसी और की ज़रूरत ही क्या। आप सोचेंगे ये आज का जुमला नहीं, ये यहूद का इतराज था। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह चौथे पारे के इब्तदा में कहते थे कि जब हम थे तो इस्लाम को आने की क्या ज़रूरत थी, जब बैतुल मकदस था तो बैतुल्ला को किबला बनाने की क्या ज़रूरत थी। जो लोग दीन को अपनी अथॉरिटी समझ लें तो उनके लिए जवाब है कि इन्नल हुदा हुदल्ला। तो ये उनकी बात थी कि इस बात को कभी तस्लीम ना करना कि किसी और को भी अल्लाह ताला ये बड़ाई दे सकता है। अच्छा, और क्या ना मानना? तीसरी बात अब यहाँ से आ रही है, औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, या ये के ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। किस बात का झगड़ा करेंगे? किस किस्म का झगड़ा था? और ये इस झगड़े की बात जो थी वो किससे मुतल्लक थी? आप देखिए कि इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इनको अपने दीन की बातें बता दी, पीछे बात हो चुकी है इसके ऊपर वैसे सूरह बकरा में, कि मदीना के जो लोकल लोग थे उनकी यहूद से दोस्तियाँ थी, फिर वो मदीना के जो लोकल लोग थे वो मुसलमान हो गए, दोस्ती फिर भी कायम थी। जब ये दोनों आपस में बैठते तो ये अपनी बातें सुनाते, आज ये सीखा, आज ये पढ़ा, आज अल्लाह के नबी ने ये कहा, ये बताया. वो कहते अच्छा, तो वो जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले यहूदी लोग होते थे, वो कहते थे हाँ बिल्कुल, हमारी भी किताब में यही लिखा है. अच्छा, अब ये बात बता के आ जाते. तो मुसलमानों को एक बात मिल गई ना कि देखो, इनको तो पता है कि ये नबी सच्चा है और ये आएगा और ये अरब में आएगा, ये सब है. तो वो हैरत करते थे इस बात पे कि फिर ये खुद मुसलमान क्यों नहीं होते. तो इनके बड़े अपने शागिर्दों को ये बात कहते थे कि देखो, अगर तुमने इनको अब तौरात की ये खबरें दे दी कि हाँ ये नबी सच्चा है और हमें इस नबी के बारे में सब कुछ पता है, तो कल कयामत के दिन ये अल्लाह के सामने जाके तुमसे झगड़ेंगे. क्या झगड़ा होगा? कि इनको पता था फिर भी नहीं माने. बात वाजे? और यहाँ हाजज तुम्हें ना हुज्जत, कि क्यामत के दिन तुम पर कोई हुज्जत कायम करके ये शर्मसार कर लेंगे. ये बातें बता के भेजते थे कि देखो जाओ और ये बातें करो. अगर सारी बात का खुलासा करें ना, तो इनके बड़े तीन नसीहतें करके अपने लोगों को अल्लाह के नबी की महफिलों में भेजते थे. भेजने का मकसद आयत 72 में गुजर गया कि सीधे साधे लोगों को इस्लाम से दूर करना. ठीक है, नसीहतें क्या होती थी? नंबर एक, ला तूमिनु इल्ला लिमन तबिय दीनकुम. जा तो रही हो, बस वही बातें मानना जो शुरू से पता थी. नई बात ना मानना, कोई नया तरीका ना सीखना या कोई नया लाइफस्टाइल ना सीख के आना, बस जो बातें कर रहे थे वही मानते जाओ. ठीक है, एक बात. दूसरी बात, इस बात का यकीन कर लेना कि जिन इनामात से तुम्हें सरफराज किया गया है वो किसी दूसरी कौम को नहीं मिल सकते. क्या? अयुताहदुम मिसलमा उती तुम. ये बात क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं वाजे हुई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. यानी दूसरी नसीहत वो ये करते थे कि इस बात का यकीन रखना कि हमारा स्टेटस जो है वो किसी और को नहीं मिलेगा. और बहुत सारे इंसानों का यही मसला होता है. बस ख़वातीन सोचती हैं कि जिस मुकाम पे मैं मौजूद थी अब मेरी बहू कभी नहीं आ सकती, जो घर में ख़ानदान में इज्जत मुझे थी वो अब किसी और को नहीं मिलेगी, कल तक मेरी अथॉरिटी थी घर में अब ये आ गई है इसकी नहीं होगी, जैसा मैं घर चला सकती हूँ वैसा कोई और नहीं चला सकता. कुछ बापों को भी ये ख्याल होता है कि जैसा बिजनेस मैं चला सकता हूँ ये बच्चा नहीं चला सकता, तुम तो कल के बच्चे हो. ये सोच है कि दूसरे को आगे आने ही ना देना, कि ये नहीं आ सकते. तीसरी बात क्या कहते थे? कि बिल्कुल मुतमईन रहो, क़यामत के दिन भी तुम पर कोई हुज्जत कायम करके तुम्हें शर्मसार कोई नहीं कर सकेगा. किस बारे में? कि तुम इस्लाम क्यों नहीं लाए, क्योंकि तुमने इनको वो बातें नहीं बतानी जो हमारी किताबों में इनके बारे में मौजूद थी. क्या? जिसका तذکرہ आ गया, औ युहाजूकुम इंदा रब्बिकुम. और ये झगड़े और भी कई किस्म के हो सकते हैं. आप देखिए कि कोई शख्स किसी को इस्लाम की बात बताए और ख़ुद अमल ना करे, या ये कह दे कि मैं अमल नहीं कर रहा, भी नहीं कर रहा, दीन ये है मैं अमल नहीं कर रहा, मुझे देख के इस्लाम ना मानना, ये तो है निजात की राह. कि वो कह दे भाई ठीक है, असल ये अब मेरे पास ये मसला नहीं अमल में आया तो मुझे छोड़ दो. दूसरा मसला क्या होता है कि किसी को बताया, अपना अमल भी नहीं था, तो फिर क्या बताया कि नहीं देखे ना, फिर ये आज के दौर में नहीं हो सकता. अब नतीजा क्या हुआ कि एक बंदे को पता भी था कि ये गलत है, ख्वाहिश के गलबे या मुआशरे के गलबे, पीयर प्रेशर की वजह से उसने भी वही किया जो सब कर रहे थे, और अपनी इस बेअमली को दलील बना के लोगों के सामने पेश किया कि जायज़ है. उसके जायज़ के फतवे को सुन के आम लोगों ने भी वही काम कर लिया. बज़ाहर अब करने वाले लोग दो किस्म के, एक जानने वाले जिनको पता ये नहीं ठीक था लेकिन हमने कर लिया, और दूसरे वो लोग हैं जो उनके फतवे के बेस पे हलाल समझते हुए कर रहे हैं. क्या ख्याल है, ये दोनों कल क़यामत के दिन एक ही जगह पे होंगे? कल क़यामत के दिन युहाजूकुम इंदा रब्बिकुम. वो लोग जो इन लोगों के फतवों पे उस काम को कर रहे थे वो झगड़ा खड़ा कर देंगे कि अल्लाह देख हम एक तरफ हैं, इन्होंने कहा था हलाल है जायज़ है हमने ये काम कर लिया, तो इनको पूछ. ऐसे वक्तों में जो जानते बूझते गलत बात बताएगा उसकी बड़ी सख्त शहमत आएगी. अब ये तो हमने दीन के मामले में की ना, यही मसला उस दौर में मदीना में था. चंद लोग जो मज़हब के नाम से मारूफ थे उनको पता था अल्लाह के नबी की बातें कि ये सच्चे हैं ये सब आएगा, लेकिन पीछे हम बात कर चुके कि तौरात जो थी आम लोगों के हाथ में नहीं थी, मजहबी इजारादारी थी उलमा की, चंद गिरोहों की मोनोपली थी उस पर। आम यहूद को वो जो कहते वो मान जाते, उनको नहीं पता था कि ये सच है, वरना वो भी इस तरफ आते। तो क़यामत के दिन उलमा यहूद जो हैं उनके खिलाफ झगड़ा कायम कर देंगे उम्मी यहूद, आम यहूद, कि भई हमें तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे उस्तादों ने कहा हमने उसको मान लिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इस बात को किस तरह से पेश किया जाए कि कुल किसको कह दीजिए, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, आप इनको कह दें क्या, इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, फजल तो अल्लाह के हाथ में है। यहाँ फजल से मुराद सबसे पहले नबूवत, क्योंकि वो ये नहीं तस्लीम कर रहे थे कि नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में चली गई। इसी तरह फजल से मुराद हिदायत भी है कि अल्लाह जिस पे फजल कर दे, जिसको हिदायत दे दे, जिसको अपनी दुनिया की इज्जत दे दे, कल तक तुम्हें दी आज उनको दे दे, ये उसके फैसले हैं। एक्स्ट्रा हर वो चीज़ जो किसी को मिली है वो अल्लाह के हाथ में है। युती ही मैयशा, वो देता है इसको, युती ही की ज़मीर फजल की तरफ है, यानी ये फजल देता है अल्लाह ताला जिसको चाहता है, क्योंकि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसत वाला और खूब जानने वाला है। कितना वुसत वाला है और उसके इल्म की हद के, इसका तस्करा 74 में है